हमारे पास आपके लिए एक हैंडआउट है, बहुत ही खूबसूरत। इसका टॉपिक है कीपिंग मुस्लिम टीन्स मुस्लिम, मुस्लिम बच्चों को मुस्लिम रखना। यानी आज का मसला ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम करना है, आज के दौर का चैलेंज क्या है कि मुसलमान बच्चों को कैसे मुसलमान रखें। चाहते हैं ना हम कि हमारे बच्चे मुस्लिम बच्चे दिखे। ये एक पूरा हैंड आउट है, इसके अंदर आपको 12 टिप्स मिलेंगी कि क्या चीज़ें कि हमारे बच्चे हमारे ही लगे। मुझे तो अपना ही अति नहीं दिखती, यानी ऐसे लगता है कि रंग ढंग सब कुछ ही बदला पड़ा है, कुछ और ही लोग दिखते हैं, अपनाइयत वो मोहब्बत नहीं है। तो इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से रखा है, बल्कि मैं आपको ज्वाइन करने को भी कहूँगी। ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन पे, soundvision.com। इनका एक ब्लॉग है, मैंने आगे भी इसको बहुत इफ़ेक्टिव पाया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने लोगों को दिया होता है कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लिखें, जाके ख़ुद पढ़ा करें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने वो चूज़ किए जो मुझे आप लोगों से के लिए इफ़ेक्टिव लगे। तो ये बच्चों को मुस्लिम लड़कों बच्चों को मुस्लिम रखने के लिए पहली चीज़ क्या है कि मेक योर इंटेंशन सिंसियर, अपनी नीयत को इखलास वाली रखें। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो अपने मुसलमान होने को कीप करते हुए इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर दूसरा ये कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो दूसरों को हम कह रहे हैं कि तुम ये इस्लाम में देखो करो, आप ख़ुद भी तो उस पर अमल करें। फिर इस तरह यूज़ द कुरान एंड सीरा एज दावा गाइड्स। यंगस्टर्स को अगर इस नॉर्वेजियन माशरे में काम करना है तो पहले लोगों को मुस्लिम बन के दिखाना पड़ेगा ना। फिर उसके लिए कुरान और हदीस को अपने लिए गाइड बुक बनाइए। टॉक टू पीपल एज इफ़ यू रियली डोंट नो देम, लोगों से जब बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करें, उनको ये ना लगे कि आप उनको जानते हैं, उनकी बुराइयों को ये वो, यानी न्यूट्रल वे में उनसे बात करें। इंशाल्लाह वो आपके इस्लाम से मुतासिर होंगे। फिर यंगस्टर्स को स्माइली रहना है, क्यों कि उनको दिखाना है कि इस्लाम पीस का नाम है, वी आर सो पीसफुल पीपल। अपनी स्कूलों में कॉलेजों में आप जहाँ किसी को डिप्रेस देखें स्ट्रेस में देखें तो आप स्माइल करें, कहना आई एम सो रिलैक्स, क्यों, बिकॉज आई एम मुस्लिम, अल मुस्लिम मीन इज़ वेरी पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, और स्माइल इज़ सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट। तो इस तरह लोगों को अपने चेहरे की इत्मीनान से बताएं कि मुस्लिम्स कितने खुश होते हैं। फिर इस तरह टेक द इनिशिएटिव एंड हैंग आउट विद देम। कभी कभी यंगस्टर्स को चाहिए कि अब नॉन मुस्लिम लोगों के बीच में जाएं, बैठें, बात करें, उनसे घुले मिलें। ये ज़्यादा चीज़ें जो ना ये इस्लाम से रेलिवेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में इंशाल्लाह ताला इसमें अगर कोई चीज़ रह जाएगी। जिस्मानी सेहत पे अगली चीज़ पे चलते हैं, और वो क्या है कि बाज़ दफ़ा यंगस्टर्स में ड्रग्स और स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है। ड्रग्स और स्मोकिंग दो ऐसे जहर हैं कि जो कई यंग्स को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। नशावर चीज़ों की आदत पड़ जाती है ऐसे मौके पर, उसके लिए माँ बाप को क्या करना है जी? नशावर चीज़ों के नुकसानात, सेहत और अकल से मतलब जो भी चीज़ें उस पर आती हैं, उसके बच्चों को नुकसान बताइए। फिर उसके जो मनी मैटर यानी इकोनॉमिकली जो बच्चों के ऊपर इसके नुकसानात होते हैं, साइकोलॉजिकली और माशरती रिलेशंस ख़राब होते हैं, अल्लाह ना करे अगर किसी का बच्चा कोई बच्ची इस किस्म की चीज़ में पड़ जाए तो फिर उसके लिए हम क्या डील किस तरह करेंगे। तो फैक्ट्स हैं कुछ इसके अंदर, इसमें वही बात है कि बच्चों को उसके साइड इफ़ेक्ट बताने हैं। अब ऐसा बंदा अगर एडिक्टेड हो जाता है तो क्यों हुआ, पहले तो ये सवाल है। एक बच्चा, याद रखिए, माहौल बाहर कितना ही बुरा क्यों ना हो, बाहर -20 भी होगा, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको सर्दी नहीं लगती ना। घर का माहौल, बाप और माँ का ताल्लुक, घर के अंदर एक अच्छा खूबसूरत माहौल बच्चों को बाहर के असर से बचा लेता है। जो बच्चे स्मोकिंग पे आए या उन्होंने ऐसी चीज़ों पे अपने आप को डाला, उसकी वजह फिर कहीं निगलेक्शन होगी, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, वक्त से पहले उनको पैसे दे दिए। एक छोटी सी नसीहत करूँगी, चाहे एप्पल कंपनी मेरे से नाराज़ हो जाए तो हो जाए, उनको भी कोई नहीं फ़र्क पड़ना मुझसे नाराज़ होकर, मैं भी नहीं होती। आप अपने बच्चों को, जो बच्चे यंग है बिल्कुल, उनको ये नेट फ़ोन ना लेके दें। यहाँ तो सबके पास ज़्यादा आईफोन होते हैं ना, सैमसंग या कुछ है, यानी हर वो फ़ोन जिसमें इंटरनेट खुलता है, ये मेरे सामने भी होता है, ये मेरे लिए शायद मेरा कुरान भी है, मेरी हदीस भी है, इसमें 100 चीज़ें होंगी जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की क्लासेस से रेलेवेंट हैं, घड़ी भी है, सब है, लेकिन शऊर है ना तो मैं इसको अच्छा यूज़ करूँगी। लेकिन छोटे बच्चे, एक लफ्ज़ आप यहाँ क्लिक करें, सिर्फ एक लफ्ज़, फिर देखें आपको क्या मिलता है। अकल नहीं है अभी उन पर, समझ नहीं, आप उनको आईफोन्स देते हैं, नहीं ये ज़िद कर रहा था, नहीं इसने मामू को कह दिया, उसने भेज दिया, खाला ने कहा तुम भेज दो, ये कोई लाड नहीं होता है। आप ऐसे किसी छोटे बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को छुरी पकड़ाएंगे? नहीं देते ना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसको हैंडल से पकड़ना है या आगे से पकड़ना है। तो बस दफ़ा जब हमारे पास अल्लाह की रहमत से पैसे वैसे आ जाते हैं तो हम उसके ऊपर फिर बहुत ही ज़्यादा बच्चों के ऊपर निछावर होते हैं, और हम असल में अपने हिसाब से कमतरी छुपा रहे होते हैं। हमें नहीं मिला था ना, हमने तो जी बनियान भी अपनी कमाई की ली थी। बच्चों को इन चीज़ों से बचाइए, ये कोई लाड नहीं है, इसलिए कि इनके अंदर बहुत हिडन मैसेजेस होते हैं। बस दफ़ा इस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि इन चीज़ों से बच्चे फिर स्मोकिंग के आदी, बैड कंपनी होती है। स्मोकिंग की आदत को कभी इग्नोर ना करें, ये तो इतनी बुरी चीज़ है कि एक बंदा बाहर भी पी के आएगा ना तो घर आएगा तो माँ को पता चलता है। आप बच्चों का मुंह सूंघे, आपको आपके बच्चों के कपड़ों से आएगी खुशबू, स्मेल आएगी। और स्मोकिंग के बाद ही दूसरा स्टेप होता है जो ड्रगिंग का होता है। तो इसके लिए ये कि नज़र रखें उनके ऊपर, उनकी हेल्थ पे रखें, और ज़रा भी इस बात खुल के बात कर लें। देखिए शुरू में बात की ना, पहले ही बच्चों को बता दें कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, सारी बात का खुलासा। अब ये चीज़ें तो आपको मिलती रहेंगी, आप सुनते रहेंगे, लेकिन क्या करूँ मैं? जो 2 दिनों में बात हुई, पहली बात ये कि आप अपने बच्चों को अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दें। बेटा, आई एम योर मॉम, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी माँ बनाया है, मैं तुम पे कुछ इख्तियार रखती हूँ। यस, जैसे मैं कहती हूँ कि ये फ़ोन मेरा है, तो बेटा पहले बताओ कि क्या तुम मेरे बच्चे हो। हाँ बेटी, आप मेरी हैं, मैंने आपको 12-15 साल से पाला रखा जी। तो फिर नाउ क्या डू आई हैव द राइट, क्या मैं ये हक रखती हूँ कि मैं आपके बारे में कुछ डिमांड करूँ? वो कहेंगे ऑफ कोर्स, यस यस। हमारे यहाँ तो वूमन माओ ने यही ख्वाहिशें रखी होती है ना कि इसकी शादी कर दूंगी, इधर कर दूंगी, उधर कर दूंगी। नहीं, आप अपने बच्चों को क्लियरली बैठ के बताएं, आई लव यू, और मुझे तुम पे ट्रस्ट है, और मुझे तुमसे कुछ उम्मीदें हैं क्या। और ये आज बताना इसलिए पड़ रहा है कि हमने इतने दिन नहीं बताया ना। अगर आप बाशऊर माँ हैं और बच्चा पैदा होता है और उसी वक्त पहले दिन से उसकी लोरियाँ और बातें कि मेरा बच्चा जो इंशाल्लाह मेरे, मैंने तो अपने ये तो अल्लाह से मैंने मांग के लिए, क्योंकि ये मेरे मेरे ख्वाबों को पूरा करेगा, मैं जो खुद नहीं कर सकी वो मैं इससे करवाऊंगी, इस तरह से बच्चों को क्लियर बताएं मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ऐसा हो। मसला कब होता है? सिचुएशन पढ़ने पे जब कहते हैं। मसलन अब एक बच्चा स्मोकिंग शुरू कर चुका है, अब जब आप उसको कहेंगे ना कि स्मोकिंग ना करो तो उसको गुस्सा आएगा, वो कहेगा अम्मी आप तो बस ऐसे ही करती, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप ये स्मोकिंग की बात 7-8 साल की उम्र में उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस बता चुके होंगे ना कि बेटा मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा कैसा होगा, मुझे ऐसा लगता है मेरा बच्चा बहुत एक्टिव होगा, फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ेगा, ये मेरा ड्रीम है। बच्चों को अपने ड्रीम्स बताएं, फिर आप बच्चों को बताएं कि मुझे ये ख्वाहिश है मेरे दिल में कि मेरे बच्चे की दाढ़ी हो। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आपको पता है वो आपके मामू की दाढ़ी है, वो जिसको कहते हैं ना सुन्नत दाढ़ी है कि एक ही दफ़ा बाल नहीं काटे ना, नेचुरल जो दाढ़ी है। तो अब बब्बू ने तो देखो दाढ़ी रखी है, लेकिन उन्होंने तो बाद में रखी है ना, तो बेटा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे की सच्ची दाढ़ी हो। 7-8 साल से बताना शुरू कर दें बातों में, प्यार में, कभी नकली दाढ़ी उसके इधर बना दें मार्कर से, कोई बाल बूल लगा के दिखा दें उसको धागे से, उसको ख्वाब दिखाएं। फिर दूसरी बात है अपने ख्वाबों को बच्चों के ख्वाब बना दें, ये भी बहुत अहम नुकता होगा। अब ये जनरल टिप्स है, अपने ख्वाबों को बच्चों के ख्वाब बना दें। देखिए एक दौर था हर बच्चा क्यों कहता था मुझे डॉक्टर बनना, हमारे दौर में क्यों? क्योंकि वो उस दौर में रिवाज ही ये था कि हर बंदा डॉक्टर, डॉक्टरी की इज्जत, डॉक्टर रिश्ते में भी डॉक्टर चाहिए। तो अपने बच्चों को बता दीजिए, बेटा मुझे तो ये अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत हम्बल हो, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा जब आए घर में तो घर के बुजुर्ग कहें कि अच्छा इतना प्यारा बच्चा आ गया। बेटा मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा दिल करता है मेरा बच्चा अपने दादा अबू या दादी अम्मा की बड़ी खिदमत करे, छोटी छोटी बड़ी, और ये कोई थ्रेटनिंग ना हो, अच्छे तरह से हो। फिर सेकेंड स्टेप पे क्या करें आप, कि अपने रूल्स जो डिफाइन करें ना, कुछ रूल्स बनाएं। आपके ख्वाब यानी ड्रीम्स और रूल्स में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। मिसाल देती हूँ प्रैक्टिकल, कि ख्वाब आप दिखा रहे हैं उसको कि वो फजर की नमाज मस्जिद पे पढ़े, और आप और आपके मियाँ और आपके घर में सारे सो रहे होते हैं फजर पे, तो रूल ख़त्म हो गया ना। तो इट्स रूल कि सुबह 5 बजे पूरे घर की लाइटें चल जाएंगी, हीट बंद हो जाएगी ना, ये सब मिल के बच्चों को कह दें। आप बच्चों को अलार्म बना लें कि आज तुमने उठाना है, आज तुमने उठाना है। आप देखिए आप सोना भी चाहेंगे तो वो नहीं सोने देंगे। फिर इसके बाद एक और चीज़ जो आपको फ़ायदा देगी इसमें, और वो क्या है, ये पहले जिक्र किया था मैंने, कि बच्चों की इसरार पर अपने रूल्स ना तोड़ें, जो डिसाइडेड इज डिसाइडेड, अब ये वापस नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ पे चलिए, और वो क्या है कि पेरेंटिंग में एक नक्स है, ये बेसिकली वो नक्स हैं जो अमूमन लोगों में होते हैं और हमने इंशाल्लाह इसे अवॉइड करना है कि कंसिस्टेंट पेरेंटिंग करें। वो कहते हैं कंसिस्टेंट होते हैं मुसलसल। मिसाल देती हूँ, आपके बच्चे ने एक दफ़ा एक बुराई की, थप्पड़ मार दिया आपने, फिर दोबारा 2 4 दिन बाद उसने वही बुराई की, आपने कुछ कहा ही नहीं क्योंकि उस वक्त आपका मूड बड़ा अच्छा था। ये ना करें। आज अगर किसी बात पे सजा दी और उसको कहा कि आइंदा नहीं करना तुमने ये काम, तो अगर आइंदा उसने किया तो फिर उससे नोटिस लें कंसिस्टेंटली। हमारा मसला है कि एक दिन इस बात पे डांट देते हैं, दूसरे दिन केयर ही नहीं करते, तीसरे दिन करते हैं। अगर आपने उसको कहा था ना कि अगर तुमने आइंदा ये चीज़ की तो मैं तुमसे ये चीज़ ले लूँगी, तो ले लीजिए, फिर इस पर आप पीछे उससे डरे नहीं और दूसरी तरफ ना रहें। फिर इसी तरह एक और चीज़ आप कीजिए, और वो क्या है कि बच्चों को हद के अंदर रहते हुए अपने जज्बात का इजहार का मौका दें। आपने घुटे हुए बच्चे नहीं पैदा करने, बिल्कुल अपने लेवल पे लाएं, उनको अपने जज्बात का इजहार करने दें और सुने, लेकिन चीखने और चिल्लाने की नहीं। बेटा काम डाउन, पहले नॉर्मल हो, अब मुझे बताओ क्या मसला है, ये तुम्हारी क्यों फाइट हो रही थी, या ये तुम मेरे साथ ऐसे अग्रेसिव क्यों। जहाँ अपने बच्चे को आप देखें ना उसका मूड चेंज हो रहा है आपसे, बैठ जाए, बेटा मुझे तो नींद नहीं आ रही थी रात को, क्या मैं फील कर रही हूँ कि तुम्हें मुझसे आजकल कुछ खिंचे खिंचे रह रहे हो, देखिएगा वो फिर दिल का कैसे रो रोएगा कि अम्मी। हाँ मुझे, बेटा आपको क्या हो गया। जैसे कुरान कहते हैं ना कि या अय्युहन्नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकका फसव्वाका फअदलक, ये इंसान तुम्हें किसने अल्लाह से दूर कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों को आप सामने रखेंगे इंशाल्लाह बच्चों के साथ मामला होगा। फिर एक और चीज़ कीजिए कि दो बच्चे सबलाइन जो होते हैं, यानी दो बच्चों के बीच में अदल रखें। मसा आप गाड़ी चला के जाती हैं, अब गाड़ी में आगे बच्चा बड़ा एक बैठ सकता है, दो बड़े बच्चे हैं, अब एक आगे बैठेगा एक पीछे, बारियां लगा लें, जाते हुए अहमद बैठेगा, आते हुए मोहसिन बैठेगा, इस तरह की बारियां लगाएं। और बच्चों को फिर पता होगा तो वो ज़िद नहीं करेंगे बल्कि वो वेट करेंगे, अच्छा अब तुम बैठ जाओ, देखना वापसी पे मैं बैठूंगा, और इससे फिर ज्यादती भी नहीं होगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि मिसाल है आपके एक बच्चे ने आपको कोई काम कहा, आप उसके लिए वो काम कर रही थी, बीच में दूसरा बच्चा कूद गया, तो अब आप पहले को छोड़ के उसको ना टैकल करें, कहना बैठ जाओ, पहले इसने कहा था ना, पहले मैं इसका काम करूंगी, फिनिश होगा फिर मैं तुम्हारा काम करूंगी। हमारी आदत है हम काउंटर पर खड़े होते हैं, एक ग्राहक को फांस लिया हमने, दूसरा आया उसके साथ भी लग गए, उसको भी लटका लिया तो तीसरे को लगा लिया, ये कभी ना करें, इससे लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर इसी तरह अगली बात यह है कि बच्चों को आज़ादी दें लेकिन वक्त ख़त्म होने पर वापस ले लें। बेटा आप जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आप 8 बजे से पहले घर आएंगे, बोले आप करते हैं, ठीक है अम्मी, फिर दे दें, और 8 से ऊपर आप ये नहीं कह रहे 1 मिनट 2 मिनट हो गए, पहले शुरू में अवॉइड करें, 8:05 हो गया, 8:10 हो गया, आप सोच लें स्टक हो गया होगा आगे, लीव इट, लेकिन कह के 8 का 10 बजे ना आए तो फिर नोटिस लें। हिकमत, हिकमत से बात करें, कोई चीज़ उल्टी नहीं पकड़नी, छुरी उल्टी पकड़ें तो अपने ही हाथ कट जाता है। फिर इसी तरह एक और चीज़ है कि आज़ादी देकर भी नज़र फिर भी रखें, ये नहीं कि कह दिया नहीं, बड़ा अंधा एतमाद कभी ना करें बच्चों पे, याद रखें। अच्छा बच्चों को ये भी कभी ना कि ज़माना बहुत ख़राब है, मैं तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, होगा क्या कि उस सब लोगों से उसका एतमाद उठ जाएगा कि ये रिश्तेदार सारे बुरे हैं, दिस एंड दैट। फिर अगला स्टेप क्या है कि अगर वो आपकी बात अपने असूलों का ख्याल ना रखे तो आइंदा आज़ादी वापस ले लें। इजाज़त दी थी आपने कि आप जा सकते हैं वीकेंड की नाइट 1 घंटा दोस्तों के साथ, लेकिन आप आज 1 घंटे या 3 घंटे लगाए ना तो दैट मीन नेक्स्ट 2 वीक्स आप नहीं जाएंगे, बिकॉज आप 2 घंटे यूज़ कर चुके। ये अपर हैंड रखें, हम इससे डरते हैं, देखिए इस पर कोई कानून आपको नहीं पकड़ेगा, रूल्स इज रूल, और आप बच्चे अगर गलत काम करते हैं तो करिए, लेकिन बच्चों के साथ ना पुलिस मैन वाला अंदाज ना रखें, इंक्वायरी कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया कैसे किया। अच्छा बाज़ दफ़ा हम क्या होता है ताने देने लगते हैं, अच्छा ड्राइविंग कैसे की थी, इशारा तो नहीं तोड़ा, ये तो नहीं किया, अच्छा दोस्त क्या करके आए थे, पैसे किसने दिए थे, चीप बातें ना करें, जो बात कल आप उनसे नहीं सुनना चाहते वो आज भी ना करें। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और काम कर लीजिए, और वो क्या है बच्चों को रिस्क लेने दें। आपका टीनेजर बच्चा है, यंग बच्चा है, बच्ची है छोटी बड़ी, थोड़ा सा रिस्क लेते हुए जाओ, कुछ बन के दिखाओ, नो प्रॉब्लम, गो अहेड डू इट, क्या होगा नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, मैं पीछे हूँ, जाओ तुम करो। उनको गलती करने दें, गलतियाँ करके ये सीखेंगे ना तो पक्के होंगे, हर बंदा अपने दौर में गलती करता है आप देखिए, और वो कहे कि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, तो इतना ना आप उनको पीछे स्पून फीडिंग करें कि ये और वो है। बाद में शादी होती है, लड़कियां अपने ससुराल में जाती हैं, तो माएँ फिर पीछे उंगलियां चमचे फेरती रहती हैं, फ़ोन कर रही हैं, अब क्या कर रही हो, एक स्काइप ने और ही मसला हल कर दिया, तस्वीरें भी लड़कियों की देखती रहती हैं, ये सास इतना काम क्यों कराती, गई है उसको जाने दीजिए, अब वो अपने घर में रहे, आपकी उसकी सास के घर के रूल्स आपसे फ़र्क होंगे, तो इस तरह से अपने बच्चों को लेके चलिए कि उनके अंदर जुरत हो। फिर एक और चीज़ ये है, अपने बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लाएं, आप उनको कभी कभी अपना लीडर बनाएं, आज मेरा बच्चा जो कुछ कहेगा मैं वो करूंगी, अब बच्चा सोच में पड़ जाएगा ना, लेकिन उससे पहले उसकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर चुके हों, पता चले वो कहते सारे पैसे मुझे दे दे इस महीने के हैं, उसको बड़ा बनाए। आपको पता है कि एक बार अल्लाह के नबी ने 7 साल के एक बच्चे को इमाम बना दिया था, जब वो सजदे में जाता तो उसका जिस्म खुल जाता था, फिर उसके लिए उस एक औरत जो थी वो चादर सिलवा के लाई और उसको बांधते, क्यों, क्योंकि उसको कुरान दूसरों से ज्यादा आता था। 17 साल की उम्र में उसामा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर का इमाम बना दिया था, हाँ, क्योंकि वो उनके अंदर वो गट्स मौजूद थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि बच्चों के अंदर अगर आपको लगे कि आपसे ज्यादा कोई खूबी है तो एडमिट कीजिए, कॉम्प्लेक्स ना हो, बेटा मुझे तो कंप्यूटर कर चलाना ही नहीं आता, बेटा ये वो, ये कोई खूबी नहीं, यकीन करें टेक्निकली अगर आपके बच्चे आपसे आगे है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप नीचे एक डाटा कोर्स कर लें आपको भी आ जाएगा। और ये जो माएँ कहते मेरे बच्चे को तो बड़ा ही कंप्यूटर आता है, ये मैं इसलिए हंस रही हूँ कि कभी किसी जगह जाए ना तो फिर अपनी जब हम कंप्यूटर क्लासेस का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि आप पेल टॉक और दिस एंड दैट, तो माँ कहते ये मेरा बच्चा इसको तो बड़ा आता है, यकीन करें जब उस टुल्लू को पूछे ना, ना उसको एक्सेल आता है ना कुछ भी नहीं आता, वो बस कंप्यूटर खोल के, अब माँ को बड़ा रो पता है चूंकि सारा दिन बैठता है, तो भाई वीडियो सर्च करना मूवीज देखना तो ये बड़ा आसान काम है ना, तो ओवर एस्टिमेट बहुत करते हैं हम लोग लोगों को देखकर। तो बहरहाल ये है कि आप करें। फिर नेक्स्ट टिप क्या है कि अपने बच्चों को कभी कभी फैसले करने का इख्तियार दें, यू विल चूज इट, गलत चीज़ का इंतखाब कर लें तो अच्छे तरीके से कह दे और ज़रा आगे जाके और देखते हैं, कुछ और है ज़रा आगे देखते हैं, चलो भाई क्या करें, क्या चलें, आज किधर चलें, मिसाल है आप सब खाना खाने जा रहे हैं, चलो बेटा आप चूज़ करें चाइनीज़ खाएं कि इटालियन खाएं कि पाकिस्तानी खाएं या घर का ही खाएं, कुछ भी खाएं या कुछ ना खाएं, हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ जो मैंने पीछे इशारतन बता दी थी आपको, कि अगर आपके बच्चों को कोई ड्रामा फिल्म बहुत क्रेज़ की हद तक पसंद है और आपको लगता है कि उसका असर उस पर आ रहा है, उस वक्त पे घूमने का प्रोग्राम बना लें, कुछ और मामला कर लें। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि अपने बच्चों को बिला वजह ताने ना दें, ये तानों से आग लगती है अंदर, बिल्कुल छुरी के साथ जैसे कट्स लगाते हैं ना, इस तरह ताने से होता है, बच्चों के दिल में आपका एतमाद ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आप उनके लिए दुआ करें, कभी आपके बच्चे को गलत काम कर रहे हैं ना, बच्चों से कहने की बजाय अल्लाह ताला से कह दें। फिर नेक्स्ट टिप, ये बहुत सारी माओं का मसला है और ख़ास पर जिनके बच्चे अकलौते हैं, और वो क्या कि बच्चों के बारे में ओवर सेंसिटिव ना हो, इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं माएँ कि अल्लाह की पनाह, ये ना करना वो ना करना, ये क्यों किया वो क्यों किया, उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जितना माँ बाप बाज़ दफ़ा रिएक्शन शो कर लेते हैं, अपने आप को देखें दूसरों को देखें, आप देखिए कि कई ऐसे मौके होते हैं कि जिसके ऊपर हम अपने बच्चों को ज़रा आगे करें तो कोई हर्ज नहीं, कोई कुछ कह भी दे उनको, वो किसी को कुछ कह दें तो कुछ भी नहीं होता। बहरहाल आगे चलिए, अपने बच्चों की तारीफ़ करें, ये एक बहुत खूबसूरत टिप होगी आपके बच्चों के लिए कि आप अपने बच्चों की तारीफ़ करना सीखें, तारीफ़ भी करें तवज्जो भी दें, आप खुद अपने लिए बनाएं ये बात, मैंने आज अपने बच्चे की किसी एक बात पे ज़रूर तारीफ़ करनी है, आज मैंने अपने बच्चे को किसी बात पे तवज्जो देनी है, आपको एंड पे एक छोटी सी असाइनमेंट मैं सिर्फ उसका आपको एक मैप देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे मामला करें कि जिसमें आप अपने बच्चे के गुड पॉइंट्स ढूंढें, आप अपने हर बच्चे के नाम पर एक छोटी सी डायरी बना लें, कॉपी बना लें, डायरी बना लें, जो आपका दिल करता है वो बना लें, फिर आप उसके अंदर बच्चे की खूबियाँ लिखें, अपने बच्चे को स्टडी करें, देखें किताबें पढ़नी कब आती हैं, जब हम किताबों को पढ़ते हैं खोलते हैं तो हर बच्चे एक किताब है, फिर उसकी 10 खूबियाँ लिखें, फिर आप उस 10 खूबियों में से किसी एक खूबी पे आज तारीफ करेंगे, ये भी नोट करें, एक दिन बस एक बात पे तारीफ करेंगे, हर वक्त नहीं करनी, अगर आज तारीफ की और आपको लग रहा है कि इसको लगा है कि मेरी इस माँ ने तारीफ कर दी है तो अगले दिन उसकी किसी ऐसी बात में जिसमें उसके अंदर कोई कमी बेशी है ना तो आप उस बच्चे की तनकीद करें, बैलेंस रखें, 10 खामियां ढूंढ लें, फिर दूसरा पॉइंट लिख लें कि मैंने अपने बच्चे की 10 खामियां लिखनी है, 10 खूबियां लिखनी है, फिर आप लिखें कि जब मुझे अपने बच्चे पे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ। आपको आता है वैसे बाय द वे बच्चों पे गुस्सा? आप कहेंगे मसला ही है। चले चंद सवाल लिखिए, पॉइंट से सिर्फ फटाफट लिख लेते हैं क्विकली कि बच्चों पे जब गुस्सा आता है किस तरह आता है, क्या करते हैं और उसको कैसे हैं। आप ड्राइविंग कर रही हैं और आपके दो बच्चे पीछे लड़ने लग गए, आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगी? दूसरा सवाल, आप स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हैं, मैं जॉब नहीं कहूँगी, आपने लिखनी है तो लिख ले, ठीक है। आप स्कूल जाने में लेट हो रही थी और आपके बच्चे ने अपने कपड़ों पे चाय गिरा ली, आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर मेहमान आने वाले थे, आपने उनके लिए चीज केक बना के रखा क्योंकि बड़े फॉर्मल मेहमान थे, और आप शावर लेने गई, वापस आई तो आपके एक बच्चे ने उसमें से एक टुकड़ा काट के खा लिया। दिल बैठ रहा ना? देखिए हम खुद को पहचानेंगे ना फिर ही काम होगा ना। हर वो मौका लिखे जिस पे आपको अपने बच्चों पे गुस्सा आता है। फिर कुछ रवैये अपने नोट करें कि मैं गुस्से की हालत में क्या करती हूं। जब मेरे बच्चे मेरी दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा करते हैं तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ? जब बच्चा मेरा फोन लेकर गेम खेलता है, ये भी एक आज के दौर का मसला हो गया, पहले कभी किसी ने ये मसला सुना भी नहीं हुआ था जो आज आम मसला हो गया। भाई आपको फोन किया था कि वो फोन ही मेरे पास नहीं था, बच्चे गेम खेल रहे थे। बच्चे आपके फोन को गेम खेलने के दौरान खराब कर दें तो आप इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं? आखिरी बता दूं ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ही रहे, आप शादी पे जाने के लिए तैयार थी, आपने बड़े अरमानों से बनाया हुआ जोड़ा पहना हुआ था, आप अपने आप को बड़ी तनकीदी नजरों से देख रही थी, पीछे से आपका बच्चा भागता हुआ आया, उसने आपकी कमीज खींची और वो पीछे से फट गई। अब उस गरीब बच्चे के साथ क्या होगा? ये है खुद को पहचानने के तरीके। इस तरह रीजनिंग कर करके देखें, फिर लिखें, खुद को पूछें कि क्या हकीकत में मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे फहम में, समझ में और हमें हिकमत दे दें। तो यही कहूँगी कि ये अल्लाह का गिफ्ट है, इसकी कदर करें। कोई आपको तोहफा दे और बाद में पता चले कि आपने उसको मिसयूज़ किया है तो तोहफा देने वाला खुश नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वक्त को नफ़ामंद करे, हमारे घरों में सुकून, खुशी, इत्मीनान अता करे। जिन साथियों ने भी इस सारे सिलसिले में मदद की, अल्लाह ताला उनको कबूल करे और हम सबको इससे सीखने वाला बनाए। आप इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, किसी की रिकॉर्डिंग्स लेकर एक एक करके घरों में सुनना शुरू कर दें। कोई फ्रेंडली वीकली, हफ्ते में एक दफ़ा, तरतीब के साथ, थोड़ी थोड़े कमेंट्स, थोड़ी थोड़ी डिस्कशंस के साथ आप करें। मुझे लगता है कि आज के दौर की ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما یا اللہ کمی بیشیوں کو معاف فرما دے بھول چوک سے درگزر فرما یا اللہ ان سب بہنوں کے دلوں کی نیک حاجات پوری فرما یا اللہ یقیناً یہ بہت سچے جذبوں کو لے کر بیٹھی یا اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے مسلمان بنیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اللہ سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین اور دنیا میں کامیاب کر۔ اللہ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے بچوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو مسلمان رکھ، یا اللہ ان کو نبی کا امتی بنا کے رکھ۔ یا اللہ ہم سے جو کمی پیشی ہوئی ہے، اب اس پہ ہمیں نہ پکڑ اور ہماری اصلاح کی توفیق دے ہمیں۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت دے۔ یا اللہ ہمارے بچے آگ کا ایندھن نہ بنے۔ یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے بچے، امت کے بچے، انسانیت کے بچے، یا اللہ ان کو آگ کا ایندھن بننے سے بچا۔ یا اللہ تو نے ان کو آگ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کی سزا ان کو نہ دینا۔ یا اللہ ہم خود ہی ہمارے فیصلے تھے کہ ہم نے ان کو ایسے کلچر میں ڈالا، ان ملکوں میں لے کے بیٹھے جہاں ہمیں خود سمجھ نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنی اولادوں کو کہاں گم کر دیا۔ یا اللہ کہیں ہماری اولادوں کے معاملے میں شیطان کا معاملہ سچ نہ ہو جائے کہ اس نے سانچے لے لیے ہمارے مال اور ہماری اولادوں میں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کر، عزتوں کی حفاظت فرما، نگاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخری راستہ قرآن اور سنت کا۔ یا اللہ مجھے صرف اس لیے اس کتاب سے اور اس قرآن سے جوڑ دے کہ میرے بچے میرے راستے پہ چلیں۔ یا اللہ آج اگر مشکل لگے گا تو کل ان کے لیے آسانی آؤں گی۔ یا اللہ اگر آج میں بھی اپنی خواہشوں میں پڑی رہی، یا اللہ اگر میں نے بھی صرف رسمن کلامن ان چیزوں کو لیا، تو میں اپنے بچوں سے کیا توقع رکھوں؟ یا اللہ مجھے فکر لگا کہ میرے بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا۔ یا اللہ دو تین نسلوں کے بعد کیا میرے بچے اسلام کا کچھ جانتے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ یا اللہ جس تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، یا اللہ جس تبدیلی سے اتنی تیزی سے دنیا ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ اثر کر رہی ہے، یا اللہ کل ان کا کیا بنے گا؟ یا اللہ کل قیامت کے دن کہیں ہمارے بچے مرے گربان پکڑ کے نہ کھڑے ہو۔ یا اللہ یہ معصوم کاغذ کے ٹکڑے، یا اللہ بن لکھے تو نے ہمیں دیے، ہم نے اپنی کوتاہیوں سے اس میں کیا کیا رنگ بھر دیے۔ یا اللہ ہمیں احساس دلا، ہمیں اپنے اس جرم کی اب تلافی کی توفیق دے۔ یا اللہ جوڑ دے ہمیں اس کتاب سے، اس قرآن سے، تیرے نبی کے فرمان سے، تیرے نبی کی سیرت سے۔ یا اللہ علم حاصل کیے بغیر یہ شعور نہیں آئے گا۔ یا اللہ اگر آج میرے دل میں ذرا سا بھی ملال ہے، تو یا اللہ مجھے تیرے کتاب سے جڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ کمی بیشی معاف فرما، جس نے جہاں کبھی دعاؤں کے لیے کہا اس کی جلدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پردیس میں ان کی حفاظت کرنا، جو سفر میں ان کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ ان جگہوں کو آباد رکھنا۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو صحیح رکھنا۔ یا اللہ یہ تیرے نام پہ جگہ بنی، تیرے ہی نام پہ قائم رہیں۔ یا اللہ تو خود ان کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان جگہوں کا حق ادا کروا۔ یا اللہ جو ساتھی بھی اس میں معاون اور مددگار ہے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ یہ اتنا اہم ٹاپک، اتنا سنجیدہ موضوع، یا اللہ اگر تو نے ہمیں سنوا ہی دیا تو ہمیں خوش قسمت محسوس کروا، کیونکہ بہت سارے جو بہت دکھی بھی ہیں وہ اس کے سننے سے محروم رہ گئے۔ یا اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔